ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में जो टॉपिक है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, हर दिन के प्रॉब्लम और उनको हम कैसे डील करें, उसको कैसे ठीक करें, उस पर मैं थोड़ा शेयर करूंगा। पहले हम खड़े हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। मेरे साथ मनीषा बहन है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, और आपको बैठे खड़े खड़े ही एक ही जगह पर मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार मेरे दोनों पांव सेकंड हार्ट है। एक हार्ट इधर है, एक हार्ट मेरे दोनों पांव है। सेकंड हार्ट काम करेगा तो पहला हार्ट काम करेगा, सेकंड हार्ट काम नहीं करेगा तो पहला भी नहीं करेगा। इसीलिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेडिकल साइंस में आ गया है, यंग हार्ट अटैक। यंग हार्ट अटैक अभी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। व्यक्ति जा रहा था मीटिंग अटेंड करने, सडनली हार्ट अटैक आया और प्रॉब्लम आया, क्योंकि कभी कभी हम अपने को चेक नहीं कराते हैं और इग्नोर करा देते हैं। और अगर हम वक्त रहते इग्नोर नहीं करते तो कई जिंदगी हम बचा सकते हैं। आइए, वेरी गुड। बैठिए, आप सब फिट है, आप लोगों को टीएमटी नहीं कराना पड़ेगा। अब जैसे ईसीजी रहता है, ईसीजी जब लेते हैं और जो नॉर्मल ईसीजी होता है उसका पैटर्न यूं रहता है, कभी भी ईसीजी फ्लैट नहीं होता है। फ्लैट तब होता है जब आत्मा निकल गई। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ भी एक ईसीजी की तरह है, रोज अप डाउन होते रहते हैं और वो नॉर्मल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। प्रॉब्लम आएंगे, और आज के ग्लोबल वर्ल्ड में तो जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसके कारण हम सभी को जो मेन दिया गया है थीम, काम और केयरफुल रहना है। केयरफुल भी रहना है और काम भी रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति के रिएक्शंस हैं बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी हर दिन एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है और हमें करना है। पर जो तीसरा वर्ड है रिएक्ट, वो कम से कम करना है, क्योंकि जितना मैं रिएक्ट करूंगा मेरी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, और जितना मैं अनवांटेड रिएक्ट करूंगा उतना मैं अनवांटेड स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में डालूंगा। और बिना कारण से अगर मैं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा हूं वो बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। तो इसीलिए जरूरी हो गया है कि मैं एक्ट करूं, इंटरैक्ट करूं, पर रिएक्ट कम से कम करूं। जहां जरूरत है वहां ठीक है, वहां हर व्यक्ति को असर्टिव होना पड़ता है, पर कहां करना है कहां नहीं करना है वो मेरे हाथ में है। एक प्रोफेसर के पास कुछ स्टूडेंट आए जिनको उन्होंने पढ़ाया था कॉलेज में। अब सब टॉप पोस्ट पर थे, सब मिलने आए, सब बैठ गए, सब अपने अपने प्रॉब्लम बताने लगे, पॉजिटिव पॉइंट भी बताए, पर सब ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे अपने प्रॉब्लम। प्रोफेसर सुन रहे थे, प्रोफेसर फिर उठकर गए, कॉफी अलग अलग मग्स में लेकर आए। कुछ मग बहुत अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे, कुछ सिंपल थे, उन्होंने रख दिया। प्रोफेसर ने देखा सबने जो ब्यूटीफुल मग हैं वो उठा लिए और जो सिंपल मग थे वो छोड़ दिए। प्रोफेसर ने उनको आंसर दिया, यही सॉल्यूशन है। मग आपको चाहिए कि कॉफी चाहिए? उन्होंने कहा कॉफी। कॉफी हमारी लाइफ है, मग मेरी पोजीशन टाइटल है, मेरा घर है, मेरी कार है, मग। और कॉफी जो अंदर पड़ी है वो लाइफ है, वो जिंदगी है। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको छोड़कर भारी को देखकर उसको उठा लिया। एक ब्यूटीफुल कोटेशन है जो मैंने यहां सीखा ब्रह्मा कुमारी में, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जिसके जितने टाइट कवरिंग रहते हैं, आवरण रहते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं दे सकता। और यहां पर मैंने सीखा मेरे को अपने आवरण को, ईगो को कम करना है, मिनिमाइज करना है। मेरे बाहर के टाइटल कुछ भी हो, पर मैं जो हूं अंदर हूं, मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर है और मेरा सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। मेरा जितना सॉफ्टवेयर पॉजिटिव होगा, पावरफुल होगा, उतना मेरा हार्डवेयर बॉडी अच्छा होगा। इसीलिए मैंने बताया, एक्सरसाइज तो लोग कर रहे हैं, डाइट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं, वो मदद करते हैं, पर सबसे बड़ा चेंज आज के समय जो बीमारियां हैं, उसमें हमें अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। क्योंकि जो यहां हो रहा है वो यहां हो रहा है। ब्रेन से एक नाव चलती है, वेगस नाव, जो ऊपर से चलकर हार्ट को सप्लाई करती है, इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। अगर वो ओवर एक्टिव हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, हार्ट अटैक होता है। फिजिकली फिट हूं, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, पर वो एक सेकंड का, एक मिनट का जो इमोशन आया, जो इंपैक्ट कर गया, वो वेगस नर्व को ओवर एक्टिव कर गया और कोरोनरी कंस्ट्रिक्शन हुआ। इसलिए यंग हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें दोनों को ध्यान रखना है, अपने टाइटल लेबल ठीक है, पर जब हम घर जाते हैं ऑफिस से, बिजनेस से, वहां पर हम क्या जाते हैं, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर। घर पर मैं अपने टाइटल नहीं ले जाता, मैं ये हूं, और टाइटल ले गए तो बच्चे कहेंगे आप वहां पर हो, यहां तो फादर मदर हो। तो रोज जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको मेरे को ठीक करना है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में पढ़ी थी, बहुत साल हो गए, और मैं सोचता हूं वो वन ऑफ द बेस्ट मैंने पढ़ी और जिसको अप्लाई किया। एक प्लंबर एक व्यक्ति के यहां काम कर रहा है। प्लंबर को कई प्रॉब्लम आते हैं उस दिन, उसकी मशीन काम नहीं करती, उसकी कई चीजें काम नहीं कर रही है। घर जाता है, कार को स्टार्ट करता है, कार नहीं स्टार्ट हो रही। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वो व्यक्ति अपनी कार में बिठाकर प्लंबर को ले जा रहा है। प्लंबर बड़ा शांत बैठा है, घर आता है, घंटी दबाने के पहले घर की, बगीचे के एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के पास जाकर कुछ करता है और बड़ा खुश होकर घंटी दबाता है। बड़ी खुशी से वाइफ को, बच्चों को मिलता है। ये व्यक्ति देख रहा था उसको कितने प्रॉब्लम आए, पेड़ के पास गया, सब ठीक हो गया। वापिस जब वो कार में बैठ रहा था, प्लंबर से पूछा तूने उस पेड़ के पास क्या किया, कोई जादू मंत्र था या कुछ था? उस प्लंबर ने कहा हर दिन प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता प्रॉब्लम नहीं आए, पर घर में घंटी दबाने के पहले मैं अपने सब प्रॉब्लम उस पेड़ पर लटका देता हूं और फिर घर जाता हूं। तो रोज हम भी क्या करें, यहां के प्रॉब्लम वहां ना ले जाएं और यहां के प्रॉब्लम वहां ना ले जाएं। घर से निकलें तो घर के प्रॉब्लम घर पर छोड़कर निकलें, और ऑफिस से निकलें तो ऑफिस के प्रॉब्लम वहां छोड़कर निकलें। तो जो हमारे इंटरैक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। स्ट्रेस तभी बढ़ता है जब हम मिक्सअप करते हैं, वो बैलेंस खो देते हैं, तो वहां भी इरिटेशन होता है, वहां भी इरिटेशन होता है। अनलेस वाइफ और हस्बैंड दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम कम होते हैं। ऐसा एक स्टडी में देखा, जिनकी वाइफ अपने हस्बैंड को घर के बाहर छोड़ने आती है जब वो काम पर जा रहा है, अगर वो हाउसवाइफ है, और उसको कुछ अच्छे शब्द बोलती है, अपना ध्यान रखना, खाना खाना, उनमें हार्ट अटैक कम थे। अब 2 साल तक तो क्या होता है, वो आती है छोड़ती है, अब 2 साल के बाद सोचती है रोज ही जा रहा है रोज ही आ रहा है, और वो बंद हो जाता है। अब वो व्यक्ति भारी इमोशन लेकर, अनएक्सप्रेस फीलिंग लेकर गाड़ी चलाता है, जो भी चलाता है, सबवे में जाता है, ट्रेन में जाता है, तो तरह तरह के कंफ्लिक्ट उसके अंदर चलते हैं। कोई ओवर क्रॉस कर गया कार में, और आज इतना सेंसिटिव नेचर हो गया है, अगर आपने किसी को क्रॉस ओवर क्रॉस करने नहीं दिया तो किलिंग हो जाती है। सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका राइट एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन बिहेवियर बदलता जा रहा है। 2000 के पहले ह्यूमन बिहेवियर अलग था, और 2000 के बाद बदलता गया, और ये पीटर ड्रकर ने भी कह दिया था, जो मैनेजमेंट गुरु रहा 2004 में, कि आने वाला समय ऐसा होगा जब कुछ काम नहीं करेगा, हर कोई अपने में खो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं हर कोई व्यक्ति अपने में खो गया। मैं भी नीचे जब वॉक करता हूं देखता हूं, कई बार कई टकराने लगते हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, गर्दन नीचे ही, सबकी अपनी दुनिया हो गई है, और उसके कारण व्यक्ति अंदर ही अंदर सप्रेस होता जा रहा है। अब ट्रेन में भी जा रहे हैं, कई बार देखता हूं पति अपना व्हाट्सएप, वाइफ अपना व्हाट्सएप, बच्चे अपना, सब अपने में खोए हुए हैं, और इसके कारण डिप्रेशन कॉमन होता जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय मेडिकल साइंस में मैं कहूं हार्ट अटैक के बाद डिप्रेशन होता जा रहा है, तीसरा कैंसर ब्रेस्ट होता जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया, जो अभी तक केवल अर्बन पॉपुलेशन में था अब सब जगह कॉमन है। और उसका कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल स्ट्रेस है वो बढ़ती जा रही है, और उसके कारण जो हार्मोन स्ट्रक्चर है लेडी का, फीमेल का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और जब कभी भी हार्मोनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, इसलिए वो 1 होता जा रहा है। आने वाले समय में अगर ये पैटर्न रहा तो डिप्रेशन और सीए ब्रेस्ट बहुत कॉमन हो जाएंगे, और वो पैटर्न हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। रेडिएशन लेवल बढ़ता जा रहा है, और रेडिएशन लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी पर असर आता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक रेडिएशन टॉलरेट कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा रेडिएशन हुआ तो वो भी डैमेज करता है, और पहला कैंसर रेडिएशन वाली वॉच से ही निकला था, वहां से शुरू हुआ था। तो हमें अब अपने को इम्पावर करना पड़ेगा, अपने कंफ्लिक्ट को, क्योस को, कंफ्यूजन को ठीक करना है और उसको रोज ठीक करके निकलना है। सबसे पहला मेजरमेंट मैं जो सोचता हूं, जब घर से निकलें, अपने को सेट करें, जो आपने यहां सीखा, जब मैं घर से निकल रहा हूं, अपने को ठीक कर रहा हूं फिजिकली, पर इमोशनली भी मैं अपने को ठीक कर रहा हूं। मेरा सॉफ्टवेयर TEAM ठीक है कि नहीं? मेरे थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी डाटा ठीक है। फिर गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं, फिर ट्रेन में बैठ रहा हूं, तो फिर जो भी कंफ्लिक्ट होंगे उसको मैं हैंडल कर लूंगा। इसी पे बहुत अच्छी स्टोरी एक ने भेजी जो क्लियर करेगी मैसेज को। एक व्यक्ति रिक्शा में बैठकर जा रहा है, रिक्शा वाला बड़ा अच्छा ड्राइवर है, चला रहा है, केयरफुल चला रहा है, हाईवे पर है। इतने में सडनली एक दूसरी रिक्शा उसके सामने आकर इंपैक्ट करने वाली थी, इस ड्राइवर ने बचा लिया और वो रिक्शा वाला जो गलत था वो इसको नेगेटिव बोलने लगा। ये रिक्शा वाले ने कुछ नहीं बोला, वो बोल बोल कर चला गया, ये फिर से गाड़ी को चलाने लगा। ये व्यक्ति ने पूछा, आप राइट थे, वो नेगेटिव था, आपने कुछ नहीं रिएक्ट किया। उसने क्या बोला, जो सीखते हैं कि रोज कई लोग घर से निकलते हैं अपने नेगेटिव प्रोग्राम को लेकर, अपने कचरे को लेकर। अब उनको कोई तो चाहिए जहां वो अपना कचरा फेंके, तो वो अपना कचरा फेंकते हैं। अब मैंने सीख लिया कि उसको मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मेरा दिन तो अच्छा जाएगा। जर्नी पर निकला हूं, बहुत अच्छी जर्नी है, 7 दिन के लिए जाना है, फ्लाइट है, बैठा हूं। अगर उस समय कुछ फ्लाइट में प्रॉब्लम आते हैं, लेट होती है, मैं अगर अनवांटेड रिएक्ट करता हूं, तब मैं सोचता हूं मेरे को तो आगे जाना है, 6 दिन 7 दिन वहां जाना है। अगर मैं अपना यहां नेगेटिविटी को खोल दूंगा तो वहां मैं क्या करूंगा। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी। हम लोग सोचते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, रिटायर्ड होऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, सेटल होंगे, तब मैं खुश होऊंगा। ऐसा समय आजकल आता ही नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं फॉरेन कंट्री में, मां बाप अकेले, और अब ये नया प्रॉब्लम आ गया। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा था, सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है, विच इज द टेरिबल पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मदर टेरेसा ने कहा, दो, कोई मुझे प्यार नहीं करता, बींग अनलव्ड, दूसरा अकेलापन, लोनलीनेस। अब ये लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है, फिजिकल लोनलीनेस, मेंटल लोनलीनेस, सब कुछ है, फिर भी मैं अपने को अकेला समझ रहा हूं। सब चले गए हैं, सेटल हो गए हैं, मैं अकेला हूं, वो अलग बात है। अब इस लोनलीनेस के कारण बीमारियां जल्दी आती है। जो लोग कहते हैं मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, 100 लोगों को बोल देंगे, भगवान सुन लेता है, भगवान को लगता है इसको कोई काम नहीं है, इसको कुछ काम दे दो तो वो बीमारी भेज देता है। इसलिए कभी नहीं बोलना मैं रिटायर्ड हो गया, जॉब से रिटायर्ड हुआ, जिंदगी से नहीं हुआ। अपने मिशन को, अपने विजन को, अपने पैशन को बना के रखना है। LIFE लाइफ का अर्थ ही है LI, लुक इनसाइड, FE, फायर एक्सटर्नली, अंदर देखो, पहले अंदर का मैच खेलो फिर बाहर का मैच खेलो। इसका दूसरा अच्छा मीनिंग मेरे को जो लगता है LI, लव इनसाइड, अपने को प्यार करो और फिर बाहर फोकस एक्सटर्नली, बाहर फोकस करो। जितने भी प्रॉब्लम मैंने देखे अभी तक लास्ट 5 साल में, कहीं भी फोकस नहीं है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। इतनी फाइलें खुली हुई है, 100 फाइलें लेकर मैं चल रहा हूं तो प्रॉब्लम आएगा। उस समय मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा इतनी फाइल। इसलिए घर से निकलें तो घर की फाइल को कम करके निकलें, प्रायोरिटी देकर निकलें। आज मुझे क्या करना है। अभी हम सब ने एक बहुत अच्छा मैच देखा था T20 का, वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया ने फाइनल जीता। मैच यूं चल रहा था पर सडनली एक कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैच, मैं भी कहूंगा, मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैच उसने पकड़ा और उस मैच के कारण पूरा खेल बदल गया। अब लोगों ने एनालिसिस किया कि क्या कारण था कि उसने कैच पकड़ लिया। उसमें 2 शब्द आए, अवेयरनेस। ही वॉज वेल अवेयर कि बॉल क्या मूवमेंट कर रही है और उसका फोकस क्लियर था कि मेरे को ऐसे करके यूं पकड़ना है। तो दोनों फैक्टर थे, अवेयरनेस एंड अटेंशन। अब मैं कहूंगा ये की वर्ड है आज के समय का, जब घर से निकलो मैं अवेयर होकर निकलो। आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई कॉन्शियसनेस। तो जो कंफ्लिक्ट आएंगे दिन भर वो कम हो जाएंगे, उनको मैं हैंडल कर सकूंगा। सामने वाला रिएक्ट कर रहा है, ऑफिस में कोई रिएक्ट कर रहा है, मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अवेयरनेस चालू है। तो रोज लुक इनसाइड, लव इनसाइड, फोकस एक्सटर्नली। हाथ उठाएं, राइट हैंड ऊपर उठाएं और कहें आई लव यू, आई लव यू। मजा नहीं आया। आइए मनीषा बहन सेकंड खड़े हो जाएं। जब तक आवाज में दम नहीं आएगा मेरे को चाहिए वाइब्रेंट टीम। लीडरशिप का कैरेक्टर है टीम आपकी पावरफुल होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। डेड आर्मी अंदर आएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर, क्या गुड मॉर्निंग। तो जब तक लीडर वाइब्रेंट नहीं है, हम हॉस्पिटल में भी ये सिस्टम बना दिया था कि हर कोई एक दूसरे को वाइब्रेंटली कहे आई एम ओके। यस
ओम शांति। अभी हम लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इसके लिए अभी आपको दो दो आपस में पेयर बना लेना है, आमने सामने हो जाएंगे, 2 या 3 ग्रुप बना लेंगे, आमने सामने फेस कर लेंगे। अभी हाथ जोड़ना है आपको, अभी हाथ जोड़ लेंगे, अभी एक दूसरे को देख के अच्छे से हंसना है आपको, ओपन हार्ट से अच्छे से हंसना है एक दूसरे को देख करके, बहुत बढ़िया। अभी एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए कहते हैं ना देख लूंगा, तो हंसते हुए देख लेंगे,
हंसते हुए देखना है।
चलिए बहुत अच्छा, अभी सामने टर्न हो जाएंगे, अभी हम लाफिंग विथ क्लैपिंग करेंगे, मैं बोलूंगी हा हा, आपको बोलना है हो हो, क्लैपिंग भी करेंगे साथ में, और मेरे सुर में सुर मिलाना है आपको, ठीक है? हा 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 हा। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट हमको हंसना है, तो ब्रेक के साथ हंसना है। मैं पहले आपको सैंपल बता देती हूँ, इसमें आपको हंसना है जोर से, लेकिन हा 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 पॉज होगा, ठीक है? फिर हा हा हा, फिर पॉज, फिर अच्छे से लाउड लाफ करना है आपको, ठीक है? साथ में, लेकिन जो ब्रेक है वो साथ में ही होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए अभी साथ में अच्छे से जोश के साथ, चलिए वेरी गुड, फिर से बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेंगे अच्छे से, रिलैक्स। अभी एक साथ ही हाथ ऊपर ले जाते हुए जितना खुल के हंस सकते हैं उतना हंसना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट। फिर से ब्रेक के साथ, हाँ जी ब्रेक के साथ हैं, तो बहुत बढ़िया, अपने लिए तालियां हो जाएंगे। कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट, तब तक नकली हंसी हंसे जब तक वो नेचुरल ना हो जाए।
सॉन्ग सॉन्ग से खड़े ही हैं तो
मेरे डांस। अच्छा अभी हम एक डांस करेंगे, इसमें भी आप लोगों को पेयर बन जाना है, पेयर बना लेना है। अब उसमें खासियत ये है कि एक रहेगा आपका रिफ्लेक्शन और एक आप खुद हैं। जैसे मिरर में जब हम सामने खड़े होते हैं तो सामने हमारा प्रतिबिंब होता है और हम उसके सामने होते हैं,
एक मिरर रहेगा दूसरा तो, उसको देख रहे।
हाँ तो आप में से कौन कौन मिरर है, मीन्स रिफ्लेक्शन है?
एक एक बन जाए मिरर।
हाँ एक मिरर, जैसे कोई मेरे साथ भी आ सकते हैं एक, हाँ जी आ जाइए। तो उसमें जैसे कि मैं हूँ तो मेरे सामने जो है, तो जैसे मिरर में हम होते हैं तो जो हाथ हम ले जाते हैं वैसा ही मूवमेंट सामने होता है ना, तो ऐसे ही आपको आमने सामने आपका वो रिफ्लेक्शन है, तो जो सामने वाला बंदा है जो आपका रिफ्लेक्शन है उसको आप जो एक्शन कर रहे हैं वो फॉलो करना है, ठीक है? हर हर शंभु में। तो हाँ जी जैसे कि ये सामने मेरे मिरर है, मिरर के सामने मैं खड़ी हूँ, ये रिफ्लेक्शन है, मैं अपना हाथ ये ऐसे ऊपर उठाती हूँ, तो आप भी ये वाला सेम साइड हाथ ऊपर उठाएंगे, इधर है तो इधर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक को फॉलो करना है, ठीक है? क्लियर है? हाँ अभी एक सॉन्ग बजेगा, उसमें आपको अपने जो फॉलो करना है अपने रिफ्लेक्शन को, मीन्स अपने रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है ओरिजिनल को, ठीक है? चलिए
आप अलग भी कर सकते हैं, अलग
आप लोग को अलग कर। We'll be right back. फॉलो किया एक दूसरे को,
आपके
रिफ्लेक्शन ने फॉलो किया, कितने मार्क्स देंगे अपने रिफ्लेक्शन को? 100, वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाएंगे, थैंक यू।
बैठिए। लाइफ को अगर डिवाइड करें, चार हिस्से हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 R, रोल, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेस। रोल है, रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे अंदर रिसोर्सेस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर कौन सा है? All are important, definitely. But which is the most important R you are learning here? अंदर जाना है। रोल, मेरे को अपना रोल क्लियर है तो मेरे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले पाऊंगा। जितने भी मैंने प्रॉब्लम देखे, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, वो रोल क्लियरिटी न होने के कारण, ड्वेलिटी के कारण आते हैं। हम सभी में ड्वेलिटी थोड़ा ज्यादा रहती है और बच्चों में, यंगस्टर में वो थोड़ा डोमिनेंट करती है कि ये करूं कि ये करूं। कईयों की क्लियर रहती है तो वो टॉप पर जाते हैं, जिनका रोल क्लियर रहता है, क्लियरिटी रहती है, वो तो टॉप पर बिना कोचिंग के चले जाते हैं। जितने भी मैंने एग्जांपल देखे, अभी यूपीएससी के रिजल्ट आए, उसमें मैंने देखा वो बच्चे जिनका क्लियर था वो टॉप पर गए। एक बहन केरला की है, उसने 8वीं से ही सोच लिया था कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है और ये बनना है। फादर सिंपल लेबर, पर उस बच्ची ने सोच लिया कि मेरे को ये बनना है और वो क्लियर करके आगे चली गई। तो रोल क्लियर था, विजन क्लियर था कि ये मेरे को करना ही करना है बिना कोचिंग के, कंफ्यूजन था ही नहीं। और जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के, वो यही आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मैचिंग नहीं हो पा रही है, मैच्योरिटी नहीं है, तो कंफ्लिक्ट आते हैं। तो उसको ठीक करना है तो रोज हमें अपनी इनर फ्रीक्वेंसी, इनर वाइब्रेशन लेवल टॉप पर ले जाना है। आज का जो गेम हो गया लाइफ का, मैंने देखा कुछ काम नहीं करता। साइकोथेरेपी में, साइकोलॉजी में भी काउंसलिंग आजकल काम नहीं करता, करता है पर 100% नहीं करता। अब काम करता है जो यहां सीखा मैंने, वाइब्रेशन। अगर मेरे इनर वाइब्रेशन अच्छे हैं, मैं अंदर और बाहर एक हूं, ट्रांसपेरेंट हूं, तो मेरे वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो काम होगा, होगा ही होगा, कहीं से भी होगा। जब मेरा सेल्फ टॉक अच्छा है, मैं खुद से अच्छी बात करता हूं, खुद को कंफ्यूज नहीं करता, खुद को नेगेटिव डायरेक्शन नहीं देता, तो वो काम यूनिवर्स करके देता है। और ये वो समय है, क्रिटिकल टाइम, जब हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाते जाना है। जिसको मैं कहूं टेक्निकल लैंग्वेज में इमोशनल स्टेबिलिटी, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आज देख रहा हूं वो हो गई है इमोशनल स्टेबिलिटी। जितना भी नुकसान देख रहा हूं, रोज टीवी पर देखते हैं, रोज देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी गई और नुकसान हुआ। सेल्फी लेने गया, पानी आ गया, चले गए। सेल्फी लेने गए, ट्रेन आ गई, गया। अब ये नया फैशन जो आ गया है अपने को दिखाने का, उस समय मेरे को सोच चलता है क्या इतना भी मेरे को मेरा कंट्रोल नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। इस साल ऑलमोस्ट मैंने देखे जहां लोग गए उनका कारण वो खुद थे। पानी तो बाद में आया, पर आपको पूरा बोला जा रहा है कि वहां मत जाओ, फिर भी जा रहे हैं, तो गलती तो उस व्यक्ति की है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है कि मेरे इमोशन मेरे थॉट्स को कंट्रोल नहीं करें, मेरे थॉट्स इमोशन को कंट्रोल करें। कब क्या करना है, क्यों करना है, मुझे मालूम होना चाहिए, जिसको मैंने कहा अवेयरनेस। अगर मेरा अवेयरनेस खुला हुआ है तो मेरे को मालूम है रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना। लोगों का जो पूरा प्री ऑक्यूपाइड माइंड आ गया है वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो अपने में खोए हुए हैं और इसके कारण ये नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने इमोशन को कंट्रोल रखिए। इमोशन अच्छी चीज है। डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा, एक किताब लिखी, लव मेडिसिन मिरेकल, कैंसर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैंने जो देखा अपने पेशेंट पर उसमें एक फैक्टर, एक इमोशन गायब था। उन्होंने कहा इल का अर्थ क्या, ILL, इल का अर्थ हुआ बीमारी। उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जिससे मैं भी सीखा, I lack love। मैं खुद को प्यार ही नहीं करता, खुद को देखता ही नहीं, खुद से बात ही नहीं करता, पर भाग रहा हूं। तो रोज अपने को प्यार करो। जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद से शेयर करते हैं, मेरे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, डोपामिन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं। जब डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती, वो कम हो जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन प्रोटेक्ट करता है कैंसर से। अब वो लेवल डाउन होती है तो तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो रोज निकलने के पहले अपने को प्यार करो। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई लव यू। बहुत अच्छे हो, सो गुड, सो नाइस। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। पैसे के बारे में भी ज्यादा किसी को बोलो मत। पैसा कम है कोई बात नहीं, बीमारी है कोई बात नहीं, पर 100 लोगों को ना बोल दो कि मैं बीमार हूं, मेरे को ये बीमारी है। अगर मैं 100 लोगों को कह देता हूं मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो थॉट पूरे यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स से वापस आएगा, हां तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे को पैसा नहीं है, वापस आएगा, हां तेरे पास पैसा नहीं है। हो या ना हो, अपने को यूनिवर्स से कहो आई एम वेल्दी, आई एम ओके, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई लव यू। कोई प्यार करे न करे, हम तो कर सकते अपने को। हम लोग क्या सोचते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा खुशी गायब होने का कारण अपेक्षाएं। रखो, एक्सपेक्टेशंस होए, पर अगर वो फुलफिल नहीं हो तो प्रॉब्लम आता है। हर पेरेंट चाहता है जो मैं नहीं बना वो बच्चे को बनाऊं, और अगर वो बनता है नहीं बनता है स्ट्रेस आता है। तो इसीलिए बीच बीच में ये देखो मेरी अपेक्षाएं और रियलिटी में क्या फर्क है। अपेक्षाएं और रियलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। हर एक की रियलिटी अलग अलग है, हर एक के प्रॉब्लम अलग अलग हैं। एक बच्चे के स्कूल के बच्चे के प्रॉब्लम अलग हैं, टीनेजर के अलग हैं, माँ के अलग हैं, हस्बैंड के अलग हैं, सीनियर के अलग हैं। हर एक के प्रॉब्लम अलग अलग हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि हर एक के प्रॉब्लम एक है। हर एक के अपने अपने एज के अनुसार, जॉब के अनुसार अलग अलग है। पर हमें उसी सब में रहते अपने को ठीक करना है। मेरे को जो जॉब दिया गया है, घर दिया गया है, बहुत अच्छा है। मेरे पास इस समय जो है बहुत अच्छा है, और जो नहीं है उसकी ज्यादा चिंता नहीं करूं। तनाव का एक मुख्य कारण होता है जो नहीं है उसकी चिंता करते हैं और जो है उसको देखते हैं। मैं यहां देख रहा हूं मेरे पास जो दिया गया है बहुत अच्छा है, ग्रेटिट्यूड। मैंने सेकंड चीज देखी लव के बाद, ग्रेटिट्यूड। हर दिन उठकर और हर रात को कहता हूं थैंक यू गॉड, जो आज दिया मेरे को बहुत अच्छा है, और जो कल देगा वो भी अच्छा है। मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूं रिजल्ट की, मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, रिजल्ट जो आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। जो सुसाइड होते हैं बच्चों के, वो इसीलिए होते हैं कि वो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फेल, FAIL, एक नेगेटिव वर्ड है और ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा पॉजिटिव है। फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, पहला कदम सीखने का। इस बार मैं नहीं कर पाया पर अगली बार करूंगा। मैं एक का पढ़ रहा था, मिस्टर नाहर का, बैंगलोर के। उन्होंने अपनी कंपनी को लॉन्च करना चाह, हैप्पी लोक करके 20 बार लॉन्च करना चाह, लॉन्च नहीं हुई, पर 21वीं बार वो लॉन्च कर गए और आज उस कंपनी का टर्नओवर बहुत बढ़ गया। 10,000 से शुरू की थी, अब आगे बढ़ गए। उन्होंने यही कहा कि मैं कभी घबराया नहीं कि क्यों नहीं हो रहा, मैं करेक्ट करता गया। तो फेल से भी बच्चे को कभी बोलो नहीं, नेगेटिव, उससे डायलॉग करो। हम कभी बच्चों से ये नहीं पूछते आज के दिन तूने खाना कितनों को खिलाया, आज तूने शेयर किया, आज तूने सपोर्ट किया, पर हम उसकी मार्कशीट को लेकर ही घूमते रहते हैं, फर्स्ट आया कि सेकंड आया, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया कि सेकंड आया। तो वो प्रेशर उसके अंदर बिल्टअप हो जाता, और कभी कभी वो बच्चे नेगेटिव कर देते हैं। मेरे साथ ही एक जूनियर लड़की, हमेशा टॉप पर आती थी, फर्स्ट। फाइनल में वो सेकंड रैंक आई, फर्स्ट रैंक आती थी, सेकंड रैंक आई। उसने सुसाइड कर लिया और लिखा, मेरे फादर ने कभी नहीं सिखाया कि सेकंड आ सकती है। इसीलिए वो नेगेटिव प्रेशर हम क्रिएट नहीं करें। आज की दुनिया में रिक्वायरमेंट अलग हो गई है, और सबसे बड़ा फैक्टर आज की दुनिया में है डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। जो व्यक्ति कुछ भी पढ़ा है, अगर उसकी निर्णय शक्ति अच्छी है, डिसीजन पावर अच्छा है, वो टॉप पर जाता है। और डिसीजन पावर तब आता है जब मेरा मन बुद्धि शांत है, मैं क्लियर हूं, मेरी इंटेलेक्ट काम कर रही है और मैं डिसाइड कर पा रहा हूं। जितने भी टॉप बिजनेसमैन इंडिया के रहे पहले के, उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं की, पर उनके डिसीजन इतने अच्छे थे कि वो टॉप पर चले गए। तो हम अपने बच्चों को, खुद को निर्णय शक्ति भी सिखाएं। आईक्यू चाहिए आज के दुनिया में, पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। आईक्यू 20% सक्सेस देता है, इमोशनल इंटेलिजेंस 80% सक्सेस देता है। स्किल्स 20% सक्सेस देती है, स्ट्रेटजीज 80% सक्सेस देती है। कब किस समय कौन सी स्ट्रेटजी खेलना है वो मेरे को आना चाहिए। पढ़ाई तो पढ़ ली, पर जब मैं मेडिकल में, हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूं, उस समय मेरी पढ़ाई काम नहीं आती। उस समय मेरे को ये काम आता है कि जो लोग हैं, पेशेंट हैं, रिलेटिव हैं, स्टाफ है, उनसे कैसे मेरे को डील करना है। और वो तब आता है जब मेरे इमोशन अच्छी तरह काम कर रहे हैं। दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लव एंड फियर। डर है तो ब्लड मेरा दोनों पांव में आ जाएगा, प्यार है तो ब्लड मेरा इंटेस्टाइन और ब्रेन में रहेगा। बच्चे ने पढ़ाई अच्छी की, जा रहा है एग्जाम देने, और जैसे ही अंदर गुस्सा, उसको डर आया, तो ब्लड दोनों पांव में आ गया, जो याद किया था लिख नहीं पा रहा। इसीलिए जिस दिन बच्चा जाए उस दिन उसको प्यार करके भेजो, आई लव यू, आई लव यू, नॉट योर रिजल्ट, आई लव यू। तो वो बच्चे का डर परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो रोज के जो प्रॉब्लम आते हैं वो तब हम ठीक कर सकते हैं जब हमारा डिसीशन पावर और परखने की शक्ति अच्छी है। परखना यानी क्या हो रहा है और मुझे क्या करना। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने बुक में दी। एक गांव में किसान है और उसकी यंग डॉटर है, और गांव में जमींदार है। किसान ने काफी लोन ले रखा है, पे नहीं कर पा रहा है। जमींदार ने कहा, लोन नहीं पे करोगे तो जेल जाओगे, अगर बचना है तो तुम्हारी डॉटर की मैरिज मैरिज से कर लो। उस रात को दोनों में काफी स्ट्रेस आया। अगले दिन पंचायत को डिसीजन लेना था, सब चल पड़े। जमींदार आगे जा रहा था, उसकी डॉटर और फादर किसान पीछे चल रहे थे। उन्होंने एक कंडीशन करी थी कि बैग में मैं दो पत्थर रखूंगा, एक व्हाइट और एक ब्लैक। अगर ब्लैक पत्थर उठाया तो उसको शादी करना पड़ेगी या आपको जेल जाना पड़ेगा, व्हाइट उठा लिया तो सब लोन माफ हो जाएगा और सब छूट जाएंगे। आगे चले, लड़की ने देखा उस जमींदार ने ब्लैक बैग में दो काले पत्थर नीचे से उठाकर डाल दिए। अब उसने देख तो लिया, बताए तो प्रॉब्लम और उठा ले तो प्रॉब्लम। चल पड़े पंचायत के सामने खड़े हुए, लड़की ने अंदर बैग के हाथ डाला और ऐसे दिखाया कि जैसे गिर रही है और वो पत्थर नीचे गिर पड़ा। लोगों का ना, अरे, लड़की ने कहा कोई बात नहीं, जो पत्थर गिर गया होगा उसके अपोजिट अंदर होगा और अंदर तो काला पत्थर था, व्हाइट उठाया था तो वो बच गई। परखने की शक्ति, ऑब्जर्वेशन, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मैं कहूं बहुत बड़ा वर्ड है लीडरशिप का, जो मैंने सीखा दादियों से, डिटैच एंड ऑब्जर्वर। आप हर दिन सीख रहे हो, हर दिन सीख रहे हो, देख रहे हो और चेंज कर रहे हो। जितना मैं ऑब्जर्वर अच्छा होऊंगा उतना मैं अपने डिसीशन पावर अच्छे कर सकता हूं। मैं बिना नाम लिए एक व्यक्ति का नाम देता हूं जिसको नोबेल प्राइज मिला ड्यू टू डिटैच ऑब्जर्वर। मैं नाम अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी बिल चल रहा है। तो जितना हम डिटैच ऑब्जर्वर रहते हैं उतना हम चीजें को, सिग्नल को पकड़ते हैं। इसको मैंने नाम दिया कैचिंग पावर। डिसीशन पावर, अवेयरनेस, तीसरा है कैचिंग पावर। मेरे को पहले से ही सिग्नल आ रहे हैं कि क्या होगा। अभी लैंडस्लाइड हुआ कई जगह, एक जगह मैंने देखा जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ एक कुत्ता वहां से निकलकर भागता हुआ आगे चला गया। यानी एनिमल को भी पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो बच के बाहर आ गया। तो ह्यूमन नेचर को तो इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि पहले से उसको सिग्नल आ जाते हैं। वो तब आते हैं जब हम शांत रहना सीख लेते हैं। शांति का अर्थ ये नहीं कि हमें किसी से बोलना नहीं है, शांति का अर्थ है मेरे अंदर की नेगेटिविटी को मैंने कम कर दिया, मैं हर सीन को अच्छी तरह देख रहा हूं। चलिए खड़े हो जाएं, आइए मनीष, थोड़ा पीएचडी लेवल तक जा रहा था। कराइए।
अपनी ये नाव है। भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। छिपा पर जाएगा वो नगर, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
कराइए एक और करा दी चिकन डांस, खड़े रहिए खड़े रहिए, पूरा एडवांटेज ले ले, नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक सेटिंग का पैसा देना पड़ता है, आपको फ्री मिल रहा। कमेंट्री ग्रेटिट्यूड की कराएंगे, बैठ जाए। मनीषा बहन एक ग्रेटिट्यूड वाली, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं यूनिवर्स का, धन्यवाद करते हैं परमात्मा का, अपने लोगों का, फैमिली का, दोस्तों का, तो और आता है। ये मैंने लक्ष्मी के उससे सीखा। लक्ष्मी को दिखाया गया ऐसा, खड़ी है, फ्लो कर रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, करेंसी कमिंग एंड गोइंग। लक्ष्मी भी कह रही है चलने दो, पर हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को पकड़ते हैं। सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो हमारा माइंड भी, अब ये बहुत गहरा पॉइंट दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा, हमारा माइंड भी हमारे जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारा जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू करता है, और इसीलिए सीएडी नंबर वन किलर है। तो जब लक्ष्मी का यूज करना है करिए। उसको कभी भी झगड़े से, कंफ्लिक्ट से, मूड ऑफ से, गुस्से में मत दो। ये बहुत बड़ा इंडिया का एक रिच, बिना नाम लिए बता रहा हूं, उसका यही प्रिंसिपल था, दो। और जब देना है खुशी से दो, चाहे वो सब्जी वाला है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, उसको फ्लो करने दो। जितना एंगर से देंगे, गुस्से से देंगे या खुशी से नहीं देंगे, उतना वो रुक जाएगी। वॉट एवर इज फ्लेक्सीबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, वॉट एवर इज विदर एंड ब्लॉक दैट विल डाई। जो चीज रुक जाती है वो डेथ है, उसको चलने दो और खुशी से चलने दो। जितना खुशी से चलेगी उतना और आएगा। मेरा खुद का एग्जाम्पल, एक बार फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में गया, कॉफी पीना था, कॉफी आई 100 रुपए की कॉफी। मैंने सोचा इतना महंगा, वहां तो 30 रुपए की है या 100 रुपए की है। फिर सेकंड थॉट आया, इतना ऊपर पिला रहे हैं, ऊपर पिला रहे हैं, 100 रुपए दे और एंजॉय कर। तो एंजॉय द फ्लो, तब आपका बॉडी का सर्कुलेशन भी फ्लो करेगा। जितना इलास्टिक होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, बॉडी के सिस्टम भी इलास्टिक होंगे। इमोशनल हेल्थ, इमोशनल एज इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एज एंड फिजिकल हेल्थ। ये अब नया कंसेप्ट है। जितना मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, मेरी बायोलॉजिकल एज अच्छी है, और जितनी मेरी बायोलॉजिकल एज अच्छी है उतना मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छा है। चलिए कराइए।
ओम शांति। पहले सभी थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे, कमर सीधी, और अपने हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखेंगे। जैसे जैसे हम धन्यवाद करेंगे, तो अपनी जो एक एक फिंगर्स है वो आपको ओपन करते जाना है, ठीक है? चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कहें मन में वैसा ही संकल्प करें। सर्वप्रथम अपना ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। गहरी सांस लें, छोड़ें। Breathe in, breathe out। अपना पूरा ध्यान अब मस्तक के बीच में एकाग्र करें। अनुभव करें कि मैं एक एनर्जी, एक चमकता सितारा मस्तक के बीच विराजमान। मैं एक एनर्जी हूं जो पूरे शरीर को चलाती है। अब सर्वप्रथम मैं दिल से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि परमात्मा ने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मेरे लिए जो योग्य था वही मेरे साथ हुआ है, और मैं दिल से परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब प्रकृति के पांचों तत्वों का, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, प्रकृति के पांचों तत्वों का मेरा पालन पोषण करने के लिए दिल से प्रकृति माँ को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने परिवारजनों को, फैमिली मेंबर्स को अपने आंखों के सामने लाएं, लौकिक माता पिता, मित्र संबंधी जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, सहयोग किया, मेरी केयर की, उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने मैं टीचर्स, गाइड, मेंटर, उनको अपने समक्ष इमर्स करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे सही राह दिखाई, मेरा मार्ग प्रशस्त किया, मुझे इस लायक बनाया। ऐसे अपने गाइड, मेंटर, पथ प्रदर्शक या टीचर को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं उन आत्माओं को इमर्स करता हूँ स्वयं के सम्मुख, जिन्होंने कभी ना कभी मुझे हर्ट किया, मेरा दिल दुखाया, चाहे अपने मन से, बोल से या अपने एक्शन से। उन आत्माओं को मैं दिल से क्षमा करता हूँ एवं मुझे इस लायक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं उन आत्माओं को इमर्स करता हूँ जिनको मैंने दुख दिया, जाने अनजाने मैंने दिल दुखाया, उन आत्माओं से मैं क्षमा मांगता हूँ, दिल से सॉरी स्वीकार करता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ एवं मुझे क्षमा करने के लिए मैं उन आत्माओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं खुद स्वयं का धन्यवाद करता हूँ कि मैं हमेशा सही मार्ग पर चलूँ, अपने मन, बुद्धि, संस्कार को नियंत्रण में रखूँ एवं परमात्मा के दिखाए राह पर मैं चलता रहूं। उसके लिए मैं स्वयं को ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लास्ट में पूरे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुभव करेंगे कि आपका जो हाथ है, फिंगर्स हैं, वो एक खिले हुए पुष्प की तरह हो गया है, कमल पुष्प की तरह हो गया है। ऐसे ही अपना जीवन भी खिला हुआ, न्यारा, प्यारा बनाए, कमल पुष्प के समान बनाए। अब दोनों हाथों को रब करेंगे और वाइब्रेशंस फील करते हुए, फेस पे लगाते हुए धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, रिस्पेक्टेड मीरा बहन और उनकी टीम का थैंक्स, जिसके कारण मैं यहां आया। और समाप्त करता हूं एक स्वामी जी के 3 शब्दों से। उन्होंने कहा 3 F 3 H 3 S इनकल्केट करो। पहला है हमारा फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मेरा फेथ, मेरा खुद पर विश्वास। इसको मैं साइकोलॉजिकली कहूं सेल्फ वर्थ। की वर्ड ये है, मेरी सेल्फ वर्थ को कभी कम ना करूं, उसमें ईगो ना हो, पर अपनी वैल्यू को समझकर मेरे को यस करना है, नो करना है। कहां यस करना है, कहां नो करना है, वो मेरे अंदर हो। एच हेल्थ, हॉबीज, हैप्पीनेस। अपनी खुशी को कभी भी कम ना करें। वो हम सभी ने दादी से सीखा, हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी दादी गुलजार जी थी। उनका ऑपरेशन हुआ और पहले दिन जब डॉक्टर उनसे मिलने गए, उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि दर्द वरद, वो कुछ नहीं बोला, ये पूछा डॉक्टर से, आप कैसे हो डॉक्टर, हाउ आर यू डॉक्टर, फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी। तो ये सीखा, चाहे कुछ भी हो, मेरे को अपनी खुशी कम नहीं करना। एच सोल, सर्विस और परमात्मा, सुप्रीम सोल, ये तीनों मेरे साथ रहे हैं। जितनी मैं सेवा करूंगा, अपने पर्पस को करूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी। ये सीक्रेट सीखा कि जितना मेरा पर्पस चलता रहेगा, उतनी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो अपने पर्पस को, मिशन को कभी कम ना करें। थैंक यू वेरी मच।